the joy that makes every moment new. It's the bliss when we are whole. It's the heartbeat of the universe. It's the silence in our soul. It's the joy that makes every moment new. It's the bliss when we are whole.
ओम शांति शांति ओम। नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज के एपिसोड में ओशो हमें ओम, प्रीति के तीन आयाम और भक्ति के सही मायने बता रहे हैं। यह डिस्कोर्स अथातो भक्ति जिज्ञासा वॉल्यूम नंबर 1 से लिया गया है।
मदद न हो।
ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। यह सुबह, यह वृक्षों में शांति, पक्षियों की चहचहाहट, या कि हवाओं का वृक्षों से गुजरना, पहाड़ों का सन्नाटा, या कि नदियों का पहाड़ों से उतरना, या सागरों में लहरों की हलचल नाद, या आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, यह सभी ओंकार है। ओंकार का अर्थ है सार ध्वनि, समस्त ध्वनियों का सार। ओंकार कोई मंत्र नहीं, सभी छंदों में छिपी हुई आत्मा का नाम है। जहां भी गीत है वहां ओंकार है, जहां भी वाणी है वहां ओंकार है, जहां भी ध्वनि है वहां ओंकार है, और ये सारा जगत ध्वनियों से भरा है। इस जगत की उत्पत्ति ध्वनि में, इस जगत का जीवन ध्वनि में, और इस जगत का विसर्जन भी ध्वनि में। ओम से सब पैदा हुआ, ओम में सब जीता, ओम में सब एक दिन लीन हो जाता है। जो प्रारंभ है वही अंत है, और जो प्रारंभ है और अंत है वही मध्य भी है। मध्य अन्यथा कैसे होगा? इंजील कहती है प्रारंभ में ईश्वर था, और ईश्वर शब्द के साथ था, और ईश्वर शब्द था, और फिर उसी शब्द से सब निष्पन्न हुआ। वह ओंकार की ही चर्चा है। मैं बोलूं तो ओंकार है, तुम सुनो तो ओंकार है, हम मौन बैठे तो ओंकार है। जहां लयबद्धता है वही ओंकार है। सन्नाटे में भी स्मरण रखना, जहां कोई नाद नहीं पैदा होता वहां भी छुपा हुआ नाद है। मौन का संगीत, शून्य का संगीत। जब तुम चुप हो तब भी तो एक गीत झरझर बहता है। जब वाणी निर्मित नहीं होती तब भी तो सूक्ष्म में छंद बंधता है, अप्रगट है, अव्यक्त है, पर है तो सही। तो शून्य में भी और शब्द में भी ओंकार निमज्जित है। ओंकार ऐसा है जैसे सागर, हम ऐसे हैं जैसे सागर की मछली। इस ओंकार को समझना, इस ओंकार को ठीक से समझा नहीं गया है। लोग तो समझे कि एक मंत्र है, दोहरा लिया। ये दोहराने की बात नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर जब छंदोबद्धता पैदा हो तभी तुम समझोगे ओंकार क्या है। हिंदू होने से नहीं समझोगे, वेद पाठी होने से नहीं समझोगे, पूजा का थाल सजाकर ओंकार की रटन करने से नहीं समझोगे। जब तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा तब समझोगे, जब तुम्हारे जीवन में गान फूटेगा तब समझोगे, जब तुम्हारे भीतर झरने बहेंगे तब समझोगे। ओम से शुरुआत अद्भुत है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, उस ओम में सब आ गया। अब आगे विस्तार होगा। जो जानते हैं उनके लिए ओम में सब कह दिया गया, जो नहीं जानते उनके लिए बात फैला के कहनी होगी, अन्यथा शास्त्र पूरा हो गया ओंकार पर। ओंकार बनता है तीन ध्वनियों से, आ ऊ मा। ये तीन मूल ध्वनियां हैं, शेष सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद है। यही असली त्रिवेणी है, आ ऊ मा। यही त्रिमूर्ति है, यही शब्द ब्रह्म के तीन चेहरे। सब शास्त्र आ ऊ मा में समाहित हो गए। हिंदुओं के हों कि मुसलमानों के, कि ईसाइयों के, बौद्धों के, कि जैनों के, भेद नहीं पड़ता। जो भी कहा गया है अब तक और जो नहीं कहा गया, सब इन तीन ध्वनियों में समाहित हो गया है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए वेद घोषणा करते हैं कि जिसने ओंकार को जान लिया उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रहा। निश्चित ही ये उस ओंकार की बात नहीं है जो तुम अपने पूजा गृह में बैठ के दोहरा लेते हो। ये ओंकार तो तुम्हारे पूरे जीवन की सुगंध की तरह प्रकट होगा तो समझोगे। तुम्हारे जीवन में बड़ी छंदहीनता है, तुम्हारा जीवन टूटा फूटा हुआ सितार है जिसके तार या तो बहुत ढीले हैं या बहुत कसे हैं, और जिस तार पर कैसे उंगलियां रखें उसका शास्त्र ही तुम भूल गए हो, और जिस सितार को कैसे बजाएं, कैसे निनादित करें उसकी भाषा ही तुम्हें नहीं आती। तुम सितार लिए बैठे हो, सितार में छिपा संगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, और जीवन बड़ी पीड़ा से भरा है। ये सारी पीड़ा रूपांतरित हो सकती है, तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ, तुम्हारे भीतर की सरिता बहे, तुम नाचो। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है, इसलिए सुभी है कि सांडिल अपने इस अपूर्व सूत्र ग्रंथ का उद्घाटन ओम से करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि भक्ति जीवन में संगीत पैदा करने की विधि है। जिस दिन तुम संगीतपूर्ण हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है, जिस दिन तुम बेसुरे ना रहोगे, उसी दिन प्रभु मिलन हो गया। प्रभु कहीं और थोड़ी, छंदबद्धता में, लयबद्धता में। जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा, गान मुखरित होगा, तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो गया। इसलिए तो कहते वेद कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। ये शास्त्र में लिखे हुए ओम की बात नहीं, ये जीवन में अनुभव की गए अनुभूत छंद की बात है। गायत्री तुम्हारे भीतर छिपी, भगवत गीता भी, कुरान की आयतें तुम्हारे भीतर मचल रही, तड़फ रही, मुक्त करो। तुम्हारे भीतर बड़ा रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले, जैसे किसी नदी में हो चट्टानों के कारण जो बह ना सकी और सागर से मिल ना सकी, जिस वृक्ष में फूल नहीं आते उसकी पीड़ा जानते हो। है और नहीं जैसा, जब तक फूल ना आए और जब तक सुगंध छिपी है जो पड़ी प्राणों में, जड़ों से जो मुक्त होना चाहती है, जो पक्षी बन के उड़ जाना चाहती आकाश में, जो पंख फैलाना चाहती है, जो चांद तारों से बात करना चाहती। बहुत दिन हो गए कारागृह में जड़ों की पड़े पड़े, जो छूट जाना चाहती है सब जंजीरों से। जब तक वह सुगंध फूलों से मुक्त ना हो जाए तब तक वृक्ष तृप्त कैसे हो, तब तक कैसी तृप्ति, कैसा संतोष, कैसी शांति, कैसा आनंद। तब तक वृक्ष उदास, ऐसे ही वृक्ष तुम हो। तुम्हारे भीतर ओंकार पड़ा है बंधन में, जंजीरों में, मुक्त करो उसे। गाओ, नाचो, ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए और नाच ही रह जाए, उस क्षण पहचान होगी ओंकार से। ऐसे गाओ कि गायक ना बचे, गीत ही रह जाए, उस क्षण तुम भगवत गीता हो गए। जिस क्षण गाने वाला भीतर ना हो और गान अपनी सहज स्फुरणा से बहे, उस क्षण तुम कुरान हो गए। उस दिन तुम्हारे भीतर परम काव्य का जन्म हुआ। उस दिन जीवन साधारण ना रहा, असाधारण हुआ। उस दिन जीवन में दीप्ति आई, आभा उपजी। इसलिए ओम से प्रारंभ है। इस ओम में इशारा है कि तुम अभी ऐसे वृक्ष हो जिसके फूल नहीं खिले, और बिना फूल खिले कोई संतुष्टि नहीं, कोई परितोष नहीं। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। और ये तुम्हें ख्याल में आ जाए कि मेरे फूल अभी खिले नहीं, कि मेरे फल अभी लगे नहीं, कि मेरा वसंत आया नहीं, कि मैं जो गीत लेकर आया था मैंने अभी गाया नहीं, कि जो नाच मेरे पैरों में पड़ा है मैंने घूंघर भी नहीं बांधे, वो नाच अभी उन्मुक्त भी नहीं हुआ। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो अथातो भक्ति जिज्ञासा, फिर भक्ति की जिज्ञासा। उसके पहले भक्ति की कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही यह है कि मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा अधूरा हूं, अभी मुझे पूरा होना है। कमियां हैं, सीमाएं हैं हजार मुझ पर, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है। बूंद हूं अभी और सागर होना है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा। तभी तो तुम जिज्ञासा में लगोगे। समझे भक्ति अर्थात क्या? एक तत्व हमारे भीतर है जिसको प्रीति कहें। ये जो तत्व हमारे भीतर है प्रीति, इसी के आधार पर हम जीते। चाहे हम गलत ही जिए तो भी हमारा आधार प्रीति ही होता है। कोई आदमी धन कमाने में लगा है, धन तो ऊपर की बात है, भीतर तो प्रीति से जी रहा है, धन से उसकी प्रीति है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है। पद तो गौण है, प्रतिष्ठा की प्रीति है। जहां भी खोजोगे तो तुम प्रीति को ही पाओगे। कोई वैश्यालय चला गया है और किसी ने किसी की हत्या कर दी, पापी में और पुण्यात्मा में तुम एक ही तत्व को एक साथ पाओगे, वह तत्व प्रीति है। फिर प्रीति किससे लग गई उससे भेद पड़ता है। धन से लग गई तो तुम धनी होकर रह जाते हो, ठीकरे हो जाते हो, कागज के सड़े गले नोट होकर मरते हो। जिससे प्रीति लगी वही हो जाओगे, यह बड़ा बुनियादी सत्य है, इसे हृदय में संभाल के रखना। प्रीति महंगा सौदा है, हर किसी से मत लगा लेना। जिससे लगाई वैसे ही हो जाओगे, वैसा होना हो तो ही लगाना। प्रीति का अर्थ ही यही होता है कि मैं यह होना चाहता हूं। राजनेता गांव में आया और तुम भीड़ करके पहुंच गए, फूल मालाएं सजा के, किस बात की खबर? तुम गहरे में चाहते हो कि मेरे पास भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए पद और प्रतिष्ठा की पूजा है। कोई फकीर गांव में आया और तुम पहुंच गए, उससे भी तुम्हारी प्रीति की खबर मिलती कि तड़फ रहे हो फकीर होने को, कि कब होगा वो मुक्ति का क्षण, जब सब छोड़ छाड़, जब किसी चीज पर मेरी कोई पकड़ न रह जाएगी। कोई संगीत सुनता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना में संगीत की छाया पड़ने लगती। तुम जिससे प्रीति करोगे वैसे हो जाओगे, जिनसे प्रीति करोगे वैसे हो जाओगे। तो प्रीति का तत्व रूपांतरकारी है, प्रीति का तत्व भीतरी रसायन है, और बिना प्रीति के कोई भी नहीं रह सकता। प्रीति ऐसी अनिवार्य है जैसे श्वास, जैसे शरीर श्वास से जीता, आत्मा प्रीति से जीती। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रीति ना हो तो तुम आत्महत्या करने को उतारू हो जाओ, या कभी तुम्हारे प्रीति का सेतु टूट जाए तो आत्महत्या करने को उतारू हो जाओगे। घर में आग लग गई और सारा धन जल गया और तुमने आत्महत्या कर ली, क्या तुम कह रहे हो? तुम ये कहते हो ये घर ही मैं था, ये मेरी प्रीति थी, अब ये ही ना रहा तो मेरे रहने का क्या अर्थ? तुम्हारी पत्नी मर गई और तुमने आत्महत्या कर ली, तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो ये मेरी प्रीति का आधार था, जब मेरी प्रीति उजड़ गई मेरा संसार उजड़ गया, अब मेरे रहने में कोई सार नहीं। हम प्रीति के साथ अपना तादात्म्य कर लेते, बिना प्रीति के कोई भी नहीं जी सकता। जीना संभव ही प्रीति के सहारे है। जैसे बिना श्वास लिए शरीर नहीं रहेगा, वैसे बिना प्रीति के आत्मा नहीं टिकेगी। प्रीति है तो आत्मा टिकी रहती, फिर प्रीति गलत से भी हो तो भी आत्मा टिकी रहती। मगर चाहिए प्रीति तो चाहिए, गलत हो कि सही। फिर प्रीति के बहुत ढंग है, वो समझ लेने चाहिए। एक प्रीति है जो तुम्हारी पत्नी में होती, मित्रों में होती, पति में होती, भाई बहन में होती, उस प्रीति को हम प्रेम कहते। प्रेम का अर्थ होता है उसके साथ जो समतल है, तुमसे ऊपर भी नहीं, तुमसे नीचे भी नहीं, तुम्हारे जैसा है, जिससे आलिंगन हो सकता है, उसको प्रेम कहते। समतुल व्यक्तियों में प्रीति होती तो प्रेम कहते। फिर एक प्रीति होती माता पिता या गुरु में, उसे श्रद्धा कहते। कोई तुमसे ऊपर है, प्रीति को पहाड़ चढ़ना पड़ता, इसलिए श्रद्धा कठिन होती। श्रद्धा में दांव लगाना पड़ता है, श्रद्धा में चढ़ाई है। इसलिए बहुत कम लोगों में वैसी प्रीति मिलेगी जिसको श्रद्धा कहे। माता पिता से कौन प्रीति करता है, कर्तव्य निभाते हैं लोग, दिखाते हैं उपचार, दिखाना पड़ता है, प्रीति कहां। अपने से ऊपर प्रीति करने में पहाड़ चढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, तुम अपने से ऊपर जितने ऊपर प्रीति करोगे उतने ही तुम ऊपर जाने लगोगे, तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसलिए तो हमने श्रद्धा को बड़ा मूल्य दिया है सदियों से, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती, अपने से पार ले जाती। तुम्हारे हाथ तुमसे ऊपर की तरफ उठने लगते और तुम्हारे पैर किसी ऊर्ध्वगमन पर गतिमान होते, तुम्हारी आंखें ऊंचे शिखरों से टकराती और चुनौती लेती। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है उसके जीवन में विकास नहीं, विकास हो ही नहीं सकता। किसी को महावीर में श्रद्धा है तो विकास होगा, किसी को बुद्ध में तो, कृष्ण में तो, क्राइस्ट में तो, श्रद्धा से विकास होता है। कृष्ण क्राइस्ट तो सब खूंटियां हैं, कहां तुमने अपनी श्रद्धा टांगी ये बात गौण है, मगर श्रद्धा कहीं ना कहीं टांगना जरूर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने महावीर चुना कि मोहम्मद, कि कृष्ण चुने कि क्राइस्ट, इसमें बहुत मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात में है कि तुमने श्रद्धा का कोई पात्र चुना, तुमने कोई चुना जो तुमसे पार है, तुमने कोई चुना जो आकाश में धवल शिखरों की भांति। उस चुनाव में ही यात्रा शुरू हो गई, तुम्हारी आंखें ऊपर उठने लगी, तुमने जमीन पर गड़े गड़े चलना बंद कर दिया, तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया, तुम्हारे पंख फड़फड़ाने लगे। आज नहीं कल तुम उड़ोगे, क्योंकि जिससे श्रद्धा लग गई है उस तक जाना होगा, यात्रा कठिन होगी तो भी जाना होगा, लाख कठिनाइयां होंगी तो भी जाना होगा। प्रीति लग जाए तो कठिनाइयों का पता नहीं चलता। तो एक प्रीति है श्रद्धा, अपने से ऊपर, वो ऊर्ध्वगामी। एक प्रीति है प्रेम, अपने से समतुल, उससे तुम कहीं जाते आते नहीं, कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते हो। पत्नी भी तुम जैसी, पति भी तुम जैसा, मित्र भी तुम जैसे, लोग अपने जैसे ही तो चुनते, लोग अपने जैसों में ही तो आकर्षित होते। अपने से बड़े में आकर्षित होने में ही खतरा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो किसी को अपने से बड़ा मानना अहंकार के प्रतिकूल है, किसी को गुरु मानना अहंकार के प्रतिकूल है। अहंकारी किसी को गुरु नहीं मान सकता, वो हजार बहाने खोजता है सिद्ध करने के कि कोई गुरु है ही नहीं। अब कहां गुरु, सतयुग में होते थे ये कलियुग है, अब कहां गुरु, ये पंचम काल है, अब कहां गुरु, सब कहानियां हैं, कपोल कल्पनाएं हैं। बचाता है अपने को, क्योंकि गुरु चुनने में ही तुमने एक बात जाहिर कर दी कि अब तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम जहां हो वहीं समाप्त नहीं हो सकते हो, ऊपर जाना है। इसलिए लोग अपने ही समान व्यक्तियों को चुनते हैं, उनके साथ कहीं जाना नहीं, यहीं झगड़ना है। पति पत्नी यहीं लड़ते रहेंगे, कोल्हू के बैल की तरह रोज वही दोहराते रहेंगे जो कल भी किया था, परसों भी किया था, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, पूरा जन्म निकल जाएगा और वही पुनरुक्ति पुनरुक्ति। नहीं कोई गति होती, हो नहीं सकती। तीसरा प्रेम है, प्रीति है, जिसे हम स्नेह कहते, वो अपने से छोटों के प्रति, पुत्र कन्यादिक या शिष्य, जो अपने से छोटे के प्रति होती। अपने से छोटे के प्रति भी हम आसानी से राजी हो जाते। सच तो यह है, हम बड़े आह्लादित होते। इसलिए तुम आह्लादित हो तो जब तुम्हारे घर में बेटा पैदा होता, तुम्हारा आह्लाद क्या है? तुम्हारा आह्लाद यही है कि इसकी तुलना में तुम बड़े हो गए। तुमने कहानी सुनी ना, अकबर ने एक लकीर खींच दी राज दरबार में आकर और कहा इसे बिना छुए छोटी कर दो। कोई ना कर सका, लेकिन बीरबल ने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींच दी, उसे छुआ नहीं, छोटी हो गई। छोटी लकीर खींच देता तो बड़ी हो जाती, उसे छुए बिना। तुम अपने पुत्र में पुत्रियों में इतना जो रस लेते हो उसका कारण क्या है? चलो कोई तो है जो तुम्हारी तरफ देखता है और तुम्हें बड़ा मानता है, तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती। इसलिए शिष्य होना कठिन है, गुरु होना आसान मालूम पड़ता है। एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा, उसने पूछा कि मुझे स्वीकार करेंगे, मैं दीक्षित होने आया हूं। गुरु ने कहा कठिन होगा मामला, यात्रा दुर्गम है, संभाल सकोगे? पात्रता है। पूछा उस युवा ने क्या करना होगा, ऐसी कौन सी कठिनाई? गुरु ने कहा जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। वर्षों तक तो जंगल से लकड़ी काटना, आश्रम के जानवरों को चराना, बुहारी लगाना, भोजन पकाना, इसमें ही लगना होगा। फिर जब पाऊंगा कि अब तुम्हारा समर्पण ठीक ठीक हुआ, तार ठीक ठीक बंधे, तब तुम्हारे ऊपर सत्य के प्रयोग शुरू होंगे, तब ध्यान और तप। उस युवक ने पूछा ये तो बड़ा झंझट की बात है, कितने वर्ष लगेंगे? ये जंगल जाना, लकड़ी काटना, भोजन बनाना, सफाई करना, जानवर चराना। गुरु ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है, निर्भर करता है कि कब तुम तैयार होगे। जब तैयार हो जाओगे तभी वर्ष भी लग सकते हैं, कभी कभी जन्म भी लग जाते हैं। उस युवक ने कहा चलिए ये तो जाने दीजिए, ये मुझे जस्ता नहीं, गुरु होने में क्या करना पड़ता है? तो उस गुरु ने कहा गुरु होने में कुछ नहीं, जैसे मैं यहां बैठा हूं ऐसे बैठ जाओ और आज्ञा देते रहो। तो उसने कहा फिर ऐसा करिए मुझे गुरु ही बना लीजिए, ये जस्ता है। गुरु कौन नहीं बन जाना चाहता? तुम भी कोई मौका नहीं खोते जब गुरु बनने का मौका मिले। किसी को अगर तुम पालो किसी हालत में कि सलाह की जरूरत है, तो तुम्हें चाहे सलाह देने योग्य पात्रता हो या ना हो तुम जरूर देते हो, तुम चूकते नहीं मौका। कोई मिल भर जाए मुसीबत में तुम उसकी गर्दन पकड़ लेते हो, तुम उसको सलाह पिलाने लगते हो, और ऐसी सलाहें जो तुमने जीवन में खुद भी कभी स्वीकार नहीं की, जिन पर तुम कभी नहीं चले, जिन पर तुम कभी चलोगे भी नहीं, लेकिन किसी और ने तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें पिला दी थी, अब तुम किसी और के साथ बदला ले रहे हो। दुनिया में सलाहें इतनी दी जाती मगर लेता कौन? कोई किसी की सलाह लेता, तुमने कभी किसी की ली? और ख्याल रखना जिसने भी तुम्हारी असहाय अवस्था का मौका उठा के सलाह दी है उससे तुम नाराज हो, अभी भी नाराज हो, तुम उसे क्षमा नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम असमय में थे और दूसरे ने फायदा उठा लिया। तुम्हारे घर में आग लग गई थी और कोई ज्ञानी तुमसे कहने लगा क्या रखा है, ये संसार तो सब जल ही रहा है, सब जल ही जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, अरे यहां रखा क्या है? ये बातें तो तुम्हें भी मालूम है, लेकिन तुम्हारा घर जल रहा है और इन सज्जन को सलाह देने की सूची, तुम्हारी पत्नी मर गई हो, कोई कह रहा है कि आत्मा तो अमर है, तुम्हारी तबीयत होती कि इसको यहीं दुरुस्त कर दो इस आदमी को, मेरी पत्नी मर गई है इसे ज्ञान सूझ रहा है, और तुम भली भांति जानते हो कि इसकी पत्नी जब मरी थी तब ये भी रो रहा था, और कल जब इसका बेटा मरेगा तो फिर ये जार जार रोएगा। तब तुम्हारे हाथ में एक मौका होगा कि तुम भी बदला ले लोगे, तुम भी सलाह दे दोगे, सलाहें एक दूसरे का अपमान है। सलाह का मतलब यह होता है तुम सिद्ध कर रहे हो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मैं ज्ञानी तुम अज्ञानी, तुम मौका पाके गुरु बन रहे हो। जांचना अपने जीवन को, जरा परखना। हर किसी को सलाह देने को तैयार हो। कोई सिगरेट पी रहा हो तुम्हारे भीतर एकदम खुजलाहट होती कि इसको सलाह दो कि सिगरेट पीना बुरा है। और तुम पान चबा रहे हो, मगर पान चबाना बात और, लेकिन तुम सलाह देने का मौका नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें सलाह दी थी और तुमने एक ना मानी, और वे ही सलाहें तुम अपने बेटों को पिला रहे हो, वे भी नहीं मानेंगे। तुमने नहीं मानी थी, कौन मानता है सलाह? क्यों सलाहें नहीं मानी जाती? कारण है, देने वाला अहंकार का मजा लेता है, लेने वाले के अहंकार को चोट लगती। तुम्हारे घर बेटे बेटियां पैदा हो जाती तुम बड़े खुश होते, तुमको ये असहाय प्राणी मिल गए जिनको अब तुम जैसा चाहो बनाओ, जहां चाहो भेजो, जो आज्ञा दो इन्हें मानना ही पड़े। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के साथ सदियों में जो अत्याचार हुआ है वैसा अत्याचार किसी के साथ कभी नहीं हुआ। गुलाम से गुलाम भी इतना गुलाम नहीं होता जितने बच्चे तुम्हारे गुलाम हो जाते, क्योंकि असहाय है, तुम पर निर्भर है, जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं मिले, सेवा नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले, मर ही जाएगा, जी ही नहीं सकता। उसका जीवन दांव पर लगा है, तुम इस मौके को नहीं चूकते, तुम इस मौके का पूरा फायदा उठा लेते हो, पूरे से ज्यादा फायदा उठा लेते हो। हालांकि तुम कहते यही हो कि मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, लेकिन अगर बहुत छानबीन करोगे, थोड़े सजग होगे, तो पाओगे अहंकार का रस ले रहे हो। और तो कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारे बेटे को तो सुननी ही पड़ती, इसलिए कौन बेटा अपने बाप को माफ कर पाता है? कोई बेटा अपने बाप को माफ नहीं कर पाता। और अगर मौका मिलेगा बुढ़ापे में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेगा। तब छोटी छोटी बातों में तुम दुत्कारे जाओगे, और तब तुम तड़फोगे और तुम कहोगे मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने अपना जीवन तेरे ऊपर लगाया, निछावर किया, और तू मुझसे बदला ले रहा है। ये कैसी अकृतज्ञता? नहीं, लेकिन तुम जांच करना, गौर करना, तुमने अपने अहंकार को खूब उछाला होगा। इस बेटे में पड़े घाव अब तक हरे। बच्चों के साथ हम बड़ा अमानवीय व्यवहार करते और ये कहते हम चले जाते हैं कि हमारा बड़ा स्नेह। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम स्नेह। मेरे देखे अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती, अन्यथा झूठी होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती, अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है, छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता उसका प्रेम बेसर्त। वो कोई शर्त बंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। वो ये भी नहीं कहता कि बड़े होकर तुम इस तरह के व्यक्ति बनना, कि मैं हिंदू हूं तो तुम भी हिंदू होना, कि मैं कम्युनिस्ट हूं तो तुम भी कम्युनिस्ट होना, कि मैं ईसाई हूं तो तुम भी ईसाई रहना, कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो तो इंजीनियर ही बनना। नहीं, वो कोई आग्रह नहीं रखता। वो कहता है मैंने तुम्हें प्रेम दिया, मैं प्रेम देकर आनंदित हुआ, तुमने मुझे हल्का किया, जैसे बादल हल्के हो जाते हैं भूमि पर बरसकर, ऐसा तुम पर बरस के मैं हल्का हुआ। मैं अनुग्रहित हूं, तुम्हें जो होना हो तुम होना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम जो होना चाहो उसमें, लेकिन तुम्हें कुछ खास बनाने की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं कौन हूं? तुम स्वतंत्र हो, तुम आत्मवान हो, मगर ये प्रेम ये स्नेह उसी में हो सकता है जिसके जीवन में श्रद्धा हुई हो और जिसने किसी गुरु का सत्संग किया हो। गुरु वही है जो तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दे कि तुम जो होना चाहो, तुम्हें साथ दे, सहारा दे, तुम्हें अपने सारी संपदा को खोल के रख दे कि चुन लो, और इतनी भी अपेक्षा न रखे कि तुम धन्यवाद देना। जब तुम किसी गुरु से मिल गए हो तभी तुम इस योग्य हो सकोगे कि अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको, सम्यक स्नेह, अन्यथा तुम्हारा स्नेह भी फांसी का फंदा होगा। और जब तुम अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा कर सको और अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको तो दोनों के मध्य में प्रेम की घटना घटती, अन्यथा नहीं घटती। तभी तुम अपनी पत्नी को प्रेम कर सकोगे, अपने पति को प्रेम कर सकोगे, उस प्रेम में बड़े फूल खिलेंगे, बड़ी सुगंध होगी, उस प्रेम में बड़े संगीत का जन्म होगा। ये प्रीति की तीन साधारण स्थितियां हैं, और जब ये तीनों सम्यक हो जाती हैं, जब इन तीनों के तार मिल जाते हैं, जब ये तीनों छंदोबद्ध हो जाती, तब चौथी अवस्था, परम अवस्था पैदा होती, उसका नाम भक्ति। अथातो भक्ति जिज्ञासा, जिसने स्नेह किया हो, जिसने प्रेम किया हो, जिसने श्रद्धा की हो और जिसके तीनों के तार मिल गए हो और तीनों के माध्यम से जिसके भीतर एक अपूर्व आनंद की आभा जगी हो, वही व्यक्ति भक्ति करने में कुशल हो सकता है। भक्ति प्रीति की पराकाष्ठा है। भक्ति का अर्थ है सर्वात्मा से प्रीति, छोटे से कर ली, समान से कर ली, बड़े से कर ली, अब सर्वात्मा से, अब परमेश्वर से। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ख्याल रखना बार बार। अगर परमेश्वर व्यक्ति है तुम्हारी धारणा में, तो तुम जो करोगे वो श्रद्धा होगी, फिर श्रद्धा में और भक्ति में कोई फर्क ना रह जाएगा। फिर तो परमेश्वर भी एक व्यक्ति हो गया, जैसे गुरु है, और ऊपर सही, बहुत ऊपर सही, मगर श्रद्धा ही रहेगी। श्रद्धा और भक्ति में भेद है। परमात्मा यानी सर्व, जिस दिन तुम्हारी प्रीति सब दिशाओं में अकारण बहने लगे, अहेतुक वृक्षों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, चांतारों को, दृश्य को, अदृश्य को, ये समस्त को तुम्हारी प्रीति मिलने लगे, तुम इस सारे के प्रेम में पड़ जाओ, तुम्हारे प्रेम पर कोई सीमाएं ना रह जाए, उस दिन भक्ति। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करें।
आज के म्यूजिकल ओशो प्रोग्राम में हमने म्यूजिक मिलारेपा की एल्बम लाफ्टर ऑफ बुद्धाज से, म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो की एल्बम से और ओशिन म्यूजिक के द्वारा बनाई गई एल्बम ओशो मेरे परम सखा से लिया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक ओशो के प्रति परम अहोभाव के साथ हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
अपना रिश्ता। अपना रिश्ता बड़ा बड़ा पुराना है, अपना रिश्ता बड़ा I'm not sure.